क्या था, रूह वही रूह नया।
जितनी विविधता भारतवर्ष में है उतनी शायद ही कहीं हो। जितने भी हमारे शहर हैं उनकी अपनी विशिष्टता है जिससे वो जाने जाते हैं। जैसे इलाहाबाद संगम से जाना जाता है, बंबई समुद्र से, और जम्मू शहर अपने मंदिरों से। लखनऊ जाना जाता है अपने तहजीब व तमद्दुन से, और सिर्फ तहजीब ही से क्यों, चौक से भी जाना जाता है लखनऊ। और चौक जाना जाता है हिंदी साहित्याकाश पर चमकने वाले सूर्य जैसे श्री अमृतलाल नागर जी के नाम से। नागर जी जब छोटे थे तब इसी चौक के आस पर झांकते हुए उन्होंने जिंदगी की विविधता को, जिंदगी की रंगीनियों को बड़े करीब से देखा है। कितने भाग्यशाली होते हैं वो लेखक जिनके नाम से एक शहर जाना जाता है। नागर जी को मैं आदर के साथ बाबूजी कहती हूँ। बाबूजी जब छोटे थे तब उनके दादा और दादी जिंदा थे, और बहुत ज़्यादा स्नेह उन्हें दादी जी से मिला। कई कहानियाँ भी उन्होंने दादी जी से ही सुनी। दादी जी तो आपकी हीरोइन रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए।
मेरी दादी की शादी बहुत गरीब घराने की थी, लेकिन शादी उनकी बहुत छोटी उम्र में होती है, 7 बरस की, क्योंकि मेरे परदादा के परिवार में उसमें कोई स्त्री नहीं थी। 7 बरस की उम्र में आई, रोटी उनको पूरे परिवार से पकाना, सुबह से सारा काम करते हुए अपनी जिंदगी बताना, ये पर उस जमाने में शादी ही छोटी छोटी है।
तो आपको दादी का प्यार मिला, दादाजी का
मुझे
भी?
मुझे अपने दादी का और दादा का खूब प्यार।
तो आप बिगड़े नहीं उससे? बिगड़े नहीं,
क्यों बिगड़े? थोड़ा सा जरूर लाल बिगाड़ देता, लेकिन दिक्कत ये थी कि पिता भी है और पिता का भाई भी है
जी,
तो वो अंकुश भी रखता। दादा दादी तो अक्सर बिगाड़ देते, उनके लाल से थोड़ा सा बच्चा बिगड़ जाता, लेकिन अगर कोई अंकुश रखने वाला भी होता तो दोनों बैलेंस कर।
तो दादी जी आपको खूब कहानियां भी सुनाती हूँ?
दादी ने मुझको खूब कहानियां सुना। मेरी आरंभ की जो कहानी का की जो प्रेरणा है उसमें मूल तो दादी।
गदर की कहानियां तो बाबूजी आपने दादी जी के मुंह से ही सुनकर लिखी होगी।
गदर के किस्से बड़े सुने अपने बचपन में।
आपने जो गदर की कहानियां गदर के फूल में लिखा है, तो उसमें
हाँ, वो मूल कारण उस समय था कि उस समय बहुत से लोग जी रहे थे। जब मैं पैदा हुआ यानी जब मैं होश संभाला तब तक गदर ज्यादा से ज्यादा 60 बरस हुए, 50 वर्ष, तो उस समय बहुत से ऐसे लोग जी रहे थे जो कि गदर से
संबंधित
घटनाओं को देख करते थे कुछ लोग। जब मैंने इंटरव्यू दिया था 1957 में, तब भी मुझे एक आध व्यक्ति ऐसे मिल गए जो कि 118 बरस के थे। मैं उनके चित्र भी दिए हैं, उनका फोटोग्राफ भी दिया
जी, जी।
तो ऐसे मिल गए तो गदर की ये कहानियां बहुत को मिल, तरह तरह की और भी बातें सुनने को मिलती। तो देखो जब बचपन हो और बचपन अकेला हो तो जो सुनने की चीजें हैं, देखने की चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करेगा बच्चा। तो जाहिर है कि मैंने मेरे कान और आँख जो आज बहुत कमजोर हो गए हैं उस जमाने में बहुत सशक्त थे, और उनसे जो सुना उन्होंने मुझको अंत में कहानी लेखक बना।
जब आप थोड़े से बड़े होने लगे होंगे उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तो आप भी उससे जरूर प्रभावित हुए होंगे।
21 के आंदोलन में तो इतना होश नहीं है ना, थोड़ा सा होश है। एक आज जैसे उस जमाने खिलाफत आंदोलन था
जी,
तो एक एक लाइन याद आती है मुझको उस समय की, बोली अम्मा यो शौकत अली की जान बेटा खिलाफत में दे दो। तो खिलाफत का आंदोलन था उस समय
जी,
आंदोलन खूब जोर से, या हम तो खादी के लेबर स्वराज हमारे को क्या
करिए,
देहाती और भी बहुत आए। लेकिन 30 के आंदोलन में मैं लगभग 14-15 वर्ष के आय पा चुके हैं, प्रभात फेरियों में भी जाता हूँ, चुटकी भंडार जो राजनीतिक कार्यकर्ता जेल गए हुआ है, गरीब हैं, उनके घर में खाने के इंतजाम हो इसलिए मोहल्ले मोहल्ले चद्दर फैला करके लोग घूमते हैं, और लड़के हम लोग खासतौर से लड़के जाते थे वो चुटकी भरा था, उसका नाम ही चुटकी भंडार पड़ गया। सुख के भंडार पर गया।
तो इसके ऊपर इन सब चीजों से मुतासिर होकर आपने कुछ लिखा होगा आजादी के?
जाहिर है को कुछ लिखा और कुछ और लिखूंगा।
तो उस वक्त जो लिखा उनमें उसमें मतलब है शुरू में कभी कविताएं लिखी या एकदम
शुरू में? 29 में साइमन कमीशन
जी
आया था लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद पंत उनको उसका नेतृत्व कर रहे थे, और वो जुलूस इतना बड़ा जुलूस था मुझे आज भी नहीं देखने को मिल रहा, और वो था पूरा जुलूस बहुत लंबा चौड़ा। आगे जब लाठी चार्ज होने लगा और पीछे आगे की भीड़ पीछे रस्सी चली आ रही, पीछे की जो भीड़ है उसको मालूम नहीं आगे क्या हो रहा, वो आगे बढ़ती चली गई। बीच में भीड़ के बीच में आज तुम यकीन मानो मालूम मेरे पैर जमीन से उठ गए थे, मैं यूँ नाचता तो उस पीड़ा के बाद उस कटुता के अनुभव के बाद पहली तुकबंदी मेरी फूटी।
जी जी जी।
अब तुकबंदी तो याद नहीं, लेकिन खाली यही कि कब तक जेल चाहेंगे, कब तक लाठियां आएंगे, हमको कुछ करना चाहिए, कुछ 14-15 वर्ष की आयु का बालक और क्या सोचेगा। तो जोश भी है, ये कविताएं तो बहुत ही कम लिखी, लेकिन शुरू में जरूर कविता है,
क्योंकि जब फूटता है भीतर से एक सोता साहित्य का तो कविता पहले आती
है। कविता पहले आती है आमतौर से, कविता है ज्यादा। पंडित मोतीलाल जी का देहांत हुआ 1930
जी
लखनऊ में, काला खाकर हाउस में ही आकर के वो ठहरे थे, वहीं उनका देहांत हुआ
जी।
इतनी विशाल जुलूस निकला था, तब भी एक कविता लिखी थी, तब उसकी तो दो लाइनें मुझे याद भी अब तक। मृदुभंज मनोहर माल को एक अमोल मनोहर मोती गयो क्या, और निज ज्योत जवाहर को देके क्या, मृदुभंज मनोहर मोती वगैरह वगैरह याद। लेकिन उस जमाने में कविता, उसके बाद ही कविता छूट गई, क्योंकि कविता में मात्रा गिनना चाहता, मात्राएं गिनी जाती थी पुराना जो था, तो उसमें गणित में मैं हमेशा से कमजोर रहा।
हर लेखक कमजोर होता है गणित
क्या बात है। तो जो गद्य का है वो खुले मैदान की तरफ से विस्तृत मिलता था, मन का अपना विकास करने को हमको बहुत अच्छा मिला। उसमें सौभाग्य ये हुआ हमको कि 1930-31 में पढ़ने का काफी मौका मिल गया था, तो शरद बाबू से मिलने गया था बनारस करते, उस जमाने में वो हावड़ा में रहते थे। अच्छा, तो पहली बार मिला था उनसे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, जो लिखो वो अनुभव से लिखो। एक बार शरण बाबू के उसके ही 2 बरस बाद एक मेरा कहानी संग्रह निकला, उसके ऊपर प्रेमचंद ने कमेंट किया, मैं तुमसे यथार्थवादी कहानियां रियलिस्टिक कहानियां। तो इन दो बातों ने मेरे ऊपर बहुत असर किया, और शरद के गुरु मंत्र के अनुसार ही मैंने आमतौर से जीवन में घूम करके लोगों के चीजें देखना शुरू करना, उनकी पढ़ाई करना, उनको नोट करना, ये शुरू किया। इसने ही मुझे वस्तुतः जो आज मैं लेखक हूँ वो बना दिया।
आपको शरद जी ने ये जरूर कहा कि घूमने से और देखने से यथार्थ को देखते हुए लिखना चाहिए, लेकिन ये जो यथार्थ है और ये जो घूमना है स्त्रियां तो ये नहीं कर सकती, तो क्या यही वजह है कि पुरुषों के मुकाबले में लेखिका स्त्रियां बहुत कम है?
स्त्रियों के कुछ और भी कारण है, घूम न सके, लेकिन अपने ही जीवन का दायरा जो उनका होता है, नारी जगत जितना जिसमें कि वो खूब घूम भी सकते हैं, उनका ही सिस्टम कम किया, उसका एक कारण बता। मैं तुमको एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा, एक हिंदी में बड़ी पुरानी कवित्री थी महादेवी जी के समवर्ती, उनके साथ तोरण देवी शुक्ल लैली हमारे लखनऊ के ही थे, और तो एक बार हमसे बोले, हमको जीजी कहते थे बड़ी थी उम्र में, तो महादेवी जी को मैं जीजी कहता था, तो उनको जीजी कहते थे। तो भैया मैंने पहली कहानी जब कविता लिखी तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कविता इसकी छपती है, इसकी कविता छपती इसके साथ शादी नहीं करेंगे। बेचारे उसका दोष यही था लल्ली जी का कि वो कविता लिखती थी, कविता छप भी गई, तो उनको हटाया गया। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी स्त्रियां मिली जो कुछ थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती और तो, लेकिन उनको मंद किया जाता था, उनको उनके स्वाह को दबाया जाता था। नेचुरली इसमें हुआ क्या कि स्त्रियों में प्रायः लेखन के जो शक्ति उभरती वो उभर न पाती। जैसे पुरानी कहानियाँ शरणदेव प्रेमचंद ने लिखी है कि नहीं, बहुत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखी
जी।
अच्छा पुरानी लेखकों में एक श्रीमती बंगबाला, हिंदी में पहली वास्तविक यथार्थवादी कहानी सरस्वती में श्रीमती बंगबाला की थी। ऐसा बढ़िया डिस्कशन जोड़ा दर्जा उस समय इंटर क्लास भी चलता था रेडियो इसमें रेल में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंटर क्लास थर्ड क्लास, तो दोहरा दर्जा का जो मध्यवर्गीय जैसे भीड़ रहती थी, तीसरे दर्जे की भीड़ इधर उधर घबराहट में जाने लगती, दोहरा दोहरा जो मध्यवर्गीय आमता बोलती थी, इतना बढ़िया चित्रण किया कि तुम आज भी पढ़ो तो आनंद आ जाएगा तुम्हें। तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों में लिखने की शक्ति या प्रतिभा नहीं, पर उस प्रतिभा को उस समय के समाज में उभरने कम दिया।
लोकगीत वो होते हैं जिनमें जो बातें न कह पाने का दुख होता है वो सबसे ज्यादा मुखर होता है। तो जितने भी लोकगीत रचे गए हैं ये जरूर स्त्रियों ने रचे होंगे, क्योंकि लिखने की सुविधा तो उनके पास थी नहीं, लेकिन जब वो शादी ब्याह में या त्योहारों में गाती होंगी तब अवश्य ही वो लोकगीत रचती होंगी।
अरे लोकगीत तो बहुत पुराने और बहुत उनके पूरी ऐतिहासिक परंपरा रखती,
तो ये स्त्रियां ही ज्यादा रचती थी,
गाती थी अधिक। बहुत से गीत प्रायः स्त्रियों ने ही रचे।
तो लोकगीत जो लोक साहित्य हमारा जो इतना समृद्ध है, हाँ, इसमें स्त्री का बहुत बड़ा योगदान,
बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। छोटा बहुत अपना आज तो सुनाई भी नहीं पड़ता, फिल्मी सॉन्ग हमारे बचपन में वो एक स्त्री का ही लिखा हुआ, छोटी बड़ी सुइयां रे, तुमने सुना होगा, छोटी बड़ी सुइयां रे जाली का मोरा कारवा, स्त्री का रहता वो गीत। या पहले तो हाई स्कूल भी नहीं था, अंग्रेजी से पढ़ाई शुरू हुई तो मिडिल क्लास थी, तो ऐसे सैया हमारे मिडिल पास अंग्रेजी बुकुल पे जाते हैं, लिखोगी ऐसे अनेक गीत मिलते।
ये जो कविता की बात आप कह रहे थे कि बहुत मात्राएं गिननी पड़ती थी, दिनकर जी कहते थे कविता का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि पहले जब छंद में बधी हुई कविताएं लिखी जाती थी तो उस वक्त उनमें जो रिदम होती थी, जो संगीत होता था, एक लय होती थी, उसकी वजह से उन्हें याद रखना बहुत आसान रहता था। लेकिन आज मुक्त छंद की कविता बहुत अच्छे भाव होते हुए भी याद रख पाना बड़ा कठिन होता है, तो क्या यही वजह है कि आज सचमुच में लोग कविता नहीं सुनते? और
नहीं नहीं ऐसा नहीं,
क्योंकि वो याद नहीं रहती।
नहीं नहीं, मुक्त छंद जो मात्राएं जब लिखी जाए तब याद भी हो जाती थी, कविता ही एक मात्र माध्यम था जिसके द्वारा हम सूक्तियां कह लेते थे, चाहे उर्दू की कविता हो, चाहे हिंदी की कविता हो, चाहे मराठी या गुजराती, किसी भी बात हो, उन्हीं के द्वारा हम सूक्तियां। तुलसी कृष्ण रामायण से कितने मुहावरे तुमने आज भी ढाल रखे, कौन रूप हो हमें कहानी, हो या अनेक को मिल जाएंगे, इस प्रकार से बहुत से दोहे मिल जाते।
लेकिन जो मुक्त छंद की कविता है,
हाँ,
वो लोग याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि संगीत में बंधी हुई, लय में बंधी हुई और धारा में बंधी हुई कविता ही याद रहती है, मुक्त छंद की कविता उतनी याद
नहीं। पर बौद्धिक जो असर कर याद न रहे वो बौद्धिक तत्व को तुम्हारे प्रेरित तो करती,
वो तो करती है।
तो अब स्वाभाविक हो कर गया कविता याद करने का यो युग ही समाप्त हो गया।
जिस तरह कहानी हम पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, उसी तरह कविता भी पढ़ने की चीज हो गई। लखनऊ में जो आपका पढ़ने लिखने का कमरा है वहाँ हजारों किताबें हैं और कई पुराने लेखकों की तस्वीरें भी वहाँ पर हैं, तो उनमें से किन किन से आप मिले हैं जो पुराने हमारे लेखक आपसे आगे की पीढ़ी?
हिंदी के तो बहुत पुराने पुराने लेखकों से अपने किशोरलाल गोस्वामी, आप तो नाम भी कम लोग लेते हैं, जमाने में उनको उपन्यास खूब चलते, किशोरलाल गोस्वामी से मिला हूँ मैं गोपाल राम गहमरी, एक तो जासूसी किताब है उनकी, बहुत उनसे मिला हूँ। और पुराने तो अनेक पत्रकार लेखक जैसे अंबिका प्रसाद वाजपेयी, रूप नारायण पांडे और लक्ष्मी धर वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी तो करे हमारे बड़े भाइयों में से सबकालीन होने लगे,
और प्रसाद निराला,
प्रसाद
प्रेमचंद इन सबसे तो दिनकर जी,
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कहानी लेखक होने के बावजूद पंत प्रसाद निराला तीनों महाकवि महादेवी चारों महाकवियों का खूब निकट प्राप्त किया। निराला जी तो रोज ही हमारे आते, निराला में उदारता बहुत थी, जहाँ एक तरफ वो अखड़ थे, अखड़ इसलिए थे कि जो बड़ा अभिजात समाज था वो अपने पैसे के आगे उनकी सरस्वती को दबा रहा, इसलिए वो वहाँ सरपंच थे, लेकिन यूँ वो अखड़ नहीं थे। बहुत बात
बाबूजी, निराला के बाद कोई प्रसाद जी की बात बताइए।
प्रसाद जी बहुत ऊंचे खानदान के आदमी थे, उनका खानदान सोनी साहू का खानदान कहलाता था, यानी जो जो नस लेते हैं नस, वो सोनी
आज सोनी,
उसको उसका बहुत बड़ा धंधा था, उनके यहाँ तम्बाकू का बहुत अच्छा धंधा था, और बड़े लखपति आदमी थे, उनका आदमी थे, तो उनके खानदान में यानी बनारस में केवल काशी नरेश और सोनी साहू इनको ही लोग संबोधित जब मिले तो नमस्कार जय राम जी करते हैं, जय शंकर करते हैं, उनको हर हर महादेव दोनों तरफ से ये संबोधन होता है। और प्रसाद जी मैंने अपनी आंखों से, कस्तूरी बहुत बड़े व्यापारी थे, तो जब कभी साहित्यकों के भंग ठंडाई वगैरह थे जो निकाल कस्तूरी रखते थे, बहुत उम्दा इत्र, बहुत उम्दा बनाते थे, बहुत ही उम्दा खुद बनाते, और कविता में तो क्या बात, क्या बात है, वो अपना लंका उनका। उसके साथ में एक गुण उनमें और भी था, मैं तुमको एक संस्मरण साहब मैंने कल भी सुनाया था एक प्रसंग में, कि मेरे पिता का देहांत हुआ, उसके बाद मैं गया था बनारस, तो उनको मालूम हो चुका था, मैं उनसे मिलता था पहले अच्छे बैठे, तो उनको मालूम हो चुका था उसके पिता का देहांत हो चुका है, तो मैं उनके घर जाके बैठा हूँ, तो कुछ नहीं कहते, केवल एक वाक्य कहा, इतना बढ़िया वाक्य कहा कि मेरे जीवन का मंत्र बन गया, कि जब तक तुम्हारे भाई नाबालिग रहे तब तक अपनी माँ को हिसाब समझाते, यानी जिससे कि कभी छोट, और हम भगवान की दया है कि उसी शायद उस मंत्र की कही की ही कृपा है, जो मेरी मत ऐसी बनी रही, मेरे दोनों भाई अब तो चले गए, छोटे भाई दोनों छोड़ चले गए, लेकिन उनका परिवार आज भी मुझसे ऐसे ही बना हुआ, मैं कह दूंगा दिन तो दिन और रात तो रात वही होगा, आज तक बना हुआ। ये जयशंकर प्रसाद यानी जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े पंडित थे, उतने ही बड़े दुनियादार थे। तुमको आश्चर्य होगा कि चंद्रगुप्त के संबंध में कौटिल्य अर्थशास्त्र उसमें दक्षिण में केवल सुना भर गया, उत्तर भारत वालों ने देखा नहीं, पर कितना अच्छा उन्होंने चंद्रगुप्त की भूमिका लिखी है, तो उसमें देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र को कितनी अच्छी तरह से उसका निरूपण किया है, देखो आश्चर्य होगा, अगर वो अच्छा अच्छा इतिहासकार नहीं करे।
प्रेमचंद जी से भी आपका खूब उठना बैठना रहा होगा, बहुत प्रोत्साहन भी उन्होंने आपको दिया होगा।
प्रेमचंद से पहली बार मिला था 1929 में जब लखनऊ में रहते थे, तब वो माधुरी के संपादक थे, और हम 14 बरस के थे उम्र में, 14-15 बरस के ऐसे ही, लेकिन प्रेमचंद रहते हैं हमारे यहाँ, हमारे लिए तो जैसे आज सिनेमा स्टारों के पीछे भागते हैं, ऐसे ही उस समय हमारे लिए कोई साहित्यिक नाम आ जाए तो हम उसके पीछे पागल हो जाए, और अब भी ऐसा नहीं है, बंगाल में है, दक्षिण में तुम पाओगे, महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर भारत में गायब हो गया धीरे धीरे, लेकिन तब भी साहित्यिकों के प्रति आकर्षण था, तो प्रेमचंद से मिलने गया था। अच्छा तब की बात तो उस समय कोई याद भी नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, बाद में प्रेमचंद ने क्रमशः लोगों को जिस तरह से उत्प्रेरित किया नई चीजें पढ़ने, गोर्की पढ़ा कि नहीं, अलेक्जेंडर कुप्रिन पढ़ा, यामा डिप्लेट पढ़ा कि नहीं, अमुक पुस्तक पढ़ी है कि नहीं, ये बराबर पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमचंद ने जितना अधिक नए साहित्य विदेशी साहित्य पढ़ने पर हमारी हिंदी के रचनाकारों को जितना अधिक उत्प्रेरित किया उतना कम लोगों ने किया।
उस समय के साहित्यकार एक परिवार की तरह रहते थे, एक परिवार जो एकदम बहुत करीब हुआ करता था, उसमें लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन भी देते थे, उनकी चीज़ें भी सुनते थे, और बहुत ही प्यार आपस में होता था। आज उस तरह का माहौल बहुत ज्यादा देखने में नहीं आता, इसकी क्या वजह है?
इतना बड़ा तो हिंदी के सीमित दायरा था, आज हिंदी कितनों की हो गई। तब तो हम कोशिश कर रहे थे कि हिंदी को अपनी स्थिति मिले, पर आज वास्तव में हिंदी को स्थिति अपनी मिल रही, लेकिन उस स्थिति को हम ठीक तरह से अभी समझ नहीं पा रहे हैं अपने नई स्थिति। अन्यथा हिंदी के प्रति ये जो उपेक्षा का भाव, कुछ तो राजनीति के कारण होता, हर मात्रा हिंदी नहीं, हिंदी तो आल है हर मातृभाषा का, हमारे देश की गुलामी के कारण अंग्रेजी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ ही गया, क्योंकि हमको अपने स्कूल में ये शिक्षा दी जाती थी स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। तो वो समय जो दूसरा है वो तब गया, अब वो समय दूसरा आ रहा है। तो उस मानसिकता का प्रभाव था जो हमारे ऊपर अंग्रेजी का आधिपत्य हावी हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया और हम लोग अंग्रेजी में बोलने लगे। आपको आश्चर्य होगा तुमको कि एक टीचर बच्चे, हम लोग इंटरवल में जब लड़के खाने वाने जहाँ नाश्ते के लिए, मैं साहब दैट बॉय वाज स्पीकिंग इन हिंदुस्तानी, शिकायत करते हमको शिकायत करके बैठे, अब नहीं है वो स्थिति। तो स्थिति का अंतर होता है हमारी मानसिकता के परिवर्तन में।
हिंदी भाषा यदि समुद्र है तो भारतवर्ष की अन्य जो भाषाएं हैं, जो भाषा रूपी नदियां हैं, जब तक वो उसमें नहीं जाएंगी तब वो बहुत बड़ा।
देखो कितने पदमा, तुमको एक बात तुमको साधारण एक शब्द तुमको देता हूँ उदाहरण के, पूजा, तुम कितने साधारण रूप से बोल जाओगे, तुमको मालूम है ये तमिल शब्द है, पुष्प चे कर्म, पूछे पुष्प कर्म, बलि जहाँ होती है तो वहाँ पूछे पूजे पूजे पूजा, उत्तर भारत में भी फैल गया तुम्हारा नीर, तमिल शब्द संस्कृत में आ गया, तन्नीर ठंडे पानी को तमिल में कहते तन्नीर, समझ गए? तो जो नीर शब्द किस तरह से आ गया, कितने शब्द तुमको एक और भी अधिक, एक शब्द नया आया है जिसको तुम लोग खूब बोलते हो पंडाल।
हाँ जी, हाँ जी।
ये पंडाल शब्द कहाँ का है? दक्षिण का, दक्षिण का शब्द है। पुराना कांग्रेस का कोई अधिवेशन कहीं हुआ होगा तो वहाँ दक्षिण भारत में चंदोवे जो बनते हैं शामियाने, वो चटाई के, खजूर की चटाइयों के बनते हैं।
जी जी।
तो वो कहते हैं पंडाल कहलाते हैं, तो रिपोर्टर को बेचारे को वो पंडाल का कोई शब्द अंग्रेजी मिला नहीं, उसने PANDAL लिख दिया पंडाल, वो तुम पंडाला बोलते हो कचो, दक्षिण भारत का शब्द बोलते हो कचो। तो कितने शब्द ऐसे होते हैं जो वडई, वो बड़ा जिसको तुम कहते हो, ये दक्षिण का शब्द है, अपड़ पप्पड़म, अपड़ पप्पड़, ये शब्द दक्षिण से कैसे उत्तर भारत में आ गया। इस प्रकार शब्दों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तजारत के कारण, साधुओं के आने जाने के, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के कारण ये बढ़ते हैं और इस तरह से शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो शब्दों का ये नहीं, ये मत कहो कि भाषाएं हमारी अलग, भाषाएं अलग हो करके भी अलग नहीं। तुमको और बता, पंजाबी में बहुत स्त्रियाँ बहुत मोए मुंडा, अब मुंडा बुद्ध मुंडित, तो मुंडा शब्द आ गया उससे, और मुंडा आप तक उत्तर भारत में चलता है, हमारे पंजाब में तो खूब मुंडा कहते हैं, मोए मुर्दा मुर्दा, मोए शब्द हमारे यहाँ उत्तर भारत में, पंजाबी संस्कारों के कारण जो पहले परिवार आए उनके साथ में शब्द आ गए, शब्द जो आते हैं वो हमारे हो जाते।
अच्छा बाबू जी, जैसे आपको भी बहुत सी भाषाएं आती हैं और पहले जो लेखक थे वो, उनको भी बहुत सी भाषाएं सीखने की ललक थी, मुझे खुद बहुत सी भाषाएं सीखने की ललक है और आती भी हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं ज्यादा भाषाएं जानने में बहुत उत्सुकता नहीं दिखाते।
एक तो कारण ये है कि हमारी पढ़ाई के स्कूल के बच्चों को देखो कितना बड़ा दो मन का बोझ अपने पीठ पर लाद करके जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई इतनी यांत्रिक हो गई है,
बोझ सर पर हृदय में डाल।
अच्छा, और दूसरा क्या है, एक चीज की और भी कमी हमारे यहाँ आ गई है, हम महसूस करते हैं, ये कारण होता होगा शायद है मानसिक तनाव, या हमको बड़ा छोटा बनाने की जो जद्दोजहद चलती है समाज में, हर आदमी एक दूसरे को दबाने के, उसके कारण हो जाता, हम किसी को क्यों सीखे, हम अपने में भरपूर। पहले का लेखक संस्कृत भाषा, बंगला, उर्दू, तीन उत्तर भारत के लेखक जो थे वो प्रायः सुनाई पर। मराठी लक्ष्मीचंद वाजपेयी थे वो मराठी भी जानते थे। पुराने लेखक जो थे वो कई भाषाएं जानते थे। अब वो क्रमशः छूट गया
जी।
लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको बढ़ना चाहिए। पर एक बात और भी तुमसे कह दें, जहाँ की तुम नई पीढ़ी कर रहे हो वहाँ मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि नई पीढ़ी भाषाएं सीखती ही नहीं।
बाबू जी आपने कहा है कि हिंदी मुझे रोटी देती है और भांग मैं खुद खा लेता हूँ। एक सवाल मेरे मन में उभरता है कि कितने हिंदी के लेखक हैं जो अपनी रोटी हिंदी से चला सकते हैं?
यदि श्रम से किया जाए, लगन से बैठ करके, कितने ऐसे हिंदी के लेखक हैं जो केवल लेखक के ऊपर ही जी रहे हैं। हमारे साथ में आखिरी साथी थे यशपाल और भगवती चरण वर्मा, वो भी अभाव अकेले में। कितने ऐसे हैं जो केवल दुख सुख मिला करके वो हिंदी के ही लेखक बने रहे, दूसरे काम करते हुए अब लिखते हैं, तो उनका लेखना गौण हो, लेखन गौण, काम पहले है। वो स्थिति नहीं, जो लेखक थे वो लेखक ही थे। वो लेखन है तो लेखन जब कर रहे हैं तब उसको स्वाभाविक रूप से अन्य साहित्य को भी पढ़ेंगे, देखेंगे भी, ये भी करेंगे। मैं लेखक हूँ इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि भारतीय भाषाओं की अन्य रचनाएं भी पढ़ूँ, विदेशी भाषाओं की। ये जब तक अपनी चेतना को व्यापक नहीं करूँगा तब तक कैसे काम चलेगा? एक तो कारण ये आ गया है कि आज के समय की आर्थिक महंगाई, तनाव, मानसिक तनाव जितना बोझ होता है वो हम में से बहुतों में ये इच्छा बुझा देता है। जो नए लड़कों को तुम आरोपित करो कि ये वो नहीं करते, ऐसा मैं नहीं मानता, उनके कुछ कारण भी, उन कारणों के ऊपर भी ध्यान करो। मैं ये मानता हूँ और पूरे विश्वास के साथ मानता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें प्रतिभा खूब, केवल प्रतिभा का बिखराव, उसका सामूहिक उपयोग नहीं कि हो रहा।
बाबू जी आज वैसे भी बहुत से लोग फिल्मों की तरफ बड़े लालच से बढ़ रहे हैं। आपने फिल्मों में बहुत लिखा और जब आपको लगा कि अब जरूरत नहीं है तो फौरन से छोड़कर पूरा लालच त्याग कर आप लखनऊ में वापस आ गए। उस वक्त की कोई घटनाएं याद आती हूँ
फिल्मों की?
फिल्मों में लेखन से संतोष मिलता है क्या?
फिल्म में लेखन करके लेखक को पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त होता।
यही मैं जानता हूँ,
जिसको अंग्रेजी का मुहावरा सेकंड फ्रिजल बजाता है, तो लेखक जो है वहाँ सेकंड फ्रिजल बजाता है, वहाँ डायरेक्टर है, अभिनेता है, वो चढ़ करके बोलता है, समझ गए? वो मुझको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए स्वाभाविक पैसा भले मिले पर पूर्ण संतोष नहीं हो रहा। तो जो लिखना चाहता हूँ वो नहीं लिख रहा, तो इसलिए छोड़ के भागा। पैसा जो मिलता था उसका उपयोग जरूर अच्छा हुआ कि मैं अखंड भारत जो अब तीन देशों में विभाजित हो गया, थोड़ी थोड़ी ढैया तो कहा जाएगा, जब कोई थोड़ा सा दो पैसे जेब में आए फालतू कहीं निकल गए।
आपने ऐसे लोगों पर भी लिखा है जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा, जैसे ये कोठे वालियां में आपने कई जगह घूम घूम के कई तरह से लोगों को फुसला कर जानना चाहा होगा उनके बारे में। फिर अब मैं नाचियों बहुत गोपाल, सूरदास का विषय बड़ा ऐतिहासिक विषय है और उसमें आपको बड़ी खोज भी करनी पड़ी होगी, तो उसके विषय में बताइए।
एक सूरदास से ही जिस संबंध में क्या कहते हो, और भी नाचो बहुत गोपाल में भी तुमने अभी पूछा
जी, जी।
तो मैंने उसमें भी कोशिश मुझे करनी पड़ी, खोज भी तो करनी पड़ती। मानस के हंस तुलसीदास के जीवन के संबंध उसमें भी, इसी तरह सूरदास के। अब जैसे सूरदास को एक उनके गोसाई जी ले गए हरिराय जी कि वो जन्मांध थे, उनकी पलकें तक नहीं थी। अच्छा, और सूरदास के अपने पदों में दो आंखें साबित नहीं थे। सूरदास की एक आंख है ताहम ताहू पर कछु कानो, यानी हल्की कहीं पर कुछ धुरधुरार दिखाई पड़े। दूसरी क्या चीज होती है कि इन चीजों को क्रमशः जब देखा और बहुत से और भी अंधों के तुलना में जब उनका अध्ययन करो तब समझ में आता है कि उसकी मानसिकता क्या। सूरदास के पदों में बहुत से ऐसे, जैसे सूरदास के बारे में एक अंधा आदमी वो तो कहाँ जाएगा, पर सूरदास चल सुआ चाहे ताबन को रस पीजे, जाबन राम नाम अमृत रस समर पात्र भर लीजिए। अयोध्या भी गया, सुहा चल तो बन वाराणसी दिखाऊ, वाराणसी भी गया। तो जब उनके ही कथ्यों को हम ले लेते हैं तो हमको बहुत प्रामाणिकता मिल जाएगी
जी। और बाबू जी, जो करवट आपने इधर लिखा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ,
हाँ खूब किया, गली मोहल्लों में बड़ी बूढ़ियों के चपरास बांधी थी, उनके लिए उनके पुराने रीत रिवाज किस्से बहुत से इकट्ठे किए। जब सामग्री एकत्र हो जाती है तब उसमें से चुनाव करना, ये रचनात्मक लेखक का अपना काम हो।
जी जी जी। और जो नए लेखक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे?
उनको वो भी अपने आप को आगे बढ़ो, करते रहो, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, काम नहीं करोगे लेखक बनाया नहीं जाता, लेखक बनता अपने अंदर की प्रेरणा से, अपने अंदर की स्फूर्ति से और श्रम से बनता।
बाबू जी, आपकी बातें सुनते हुए तो लगता है सुनते ही चले जाएंगे। हाँ। हमेशा जब भी आपको सुना है, आपके पास बैठने के बाद इतनी प्रेरणा मिलती है।
पता, ये मेरा काम है, मेरा काम और क्या।
आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। जी तो चाहता है और भी सुने, लेकिन अब मैं आपको।